संस्थाएं हैं वे स्वयंपूर्ण है बताओ
अमेरिका
उसका निरंतर परिणाम हो रहा है अतः वो परिणामी है। आत्मानुभूति के हेतु से पर्याय के तरफ दृष्टि न करने हेतु उसे अपरिणामी कहा गया है। आत्मानुभूति के समय परिणामों के तरफ लक्ष्य नहीं करना मात्र नायक स्वभाव को अपने त्रिकारी स्वभाव को ही देखते रहे ऐसा आपने कहा नहीं ऐसा कहना योग्य है कि नहीं।
अब वो कागज भी दे दो उनको
कागज
थोड़ा छोटा छोटा प्रश्न लिखना चाहिए
बड़े अक्षर से
बड़े अक्षर से
छोटा सवाल बड़े अक्षर
स्पष्ट नहीं है बता रहे
बहुत से प्रश्न तो केवल पूछने के लिए आते हैं कि इसका विशेष खुलासा करें ये ठीक है कि नहीं।
इसमें लिखा है कि आत्मा नायक है उसमें उत्पाद उत्पाद गुण है अतः उसका निरंतर परिणमन हो रहा है अतः वह परिणामी है। आत्मानुभूति हेतु पर्याय की तरफ दृष्टि न करने हेतु उसे अपरिणामी कहा गया है। आत्मानुभूति के समय परिणामों के तरफ लक्ष्य नहीं करना मात्र नायक स्वभाव को अपने त्रिकाली स्वभाव को ही देखते रहे ऐसा कहना योग्य है या नहीं स्पष्ट करें। आत्मा है वो त्रिकाली द्रव्य से अपरिणामी है परिणाम के साथ उसको मिलाते हैं तो वो परिणामी है परिणाम का भेद करते हैं तो परिणाम भी है अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी होता है। तो परिणाम लक्ष्य करता है नायक का तो स्वानुभूति होती है परिणाम परिणाम का या राग का लक्ष्य करता है तो स्वानुभूति नहीं होती है इसीलिए परिणाम में नायक का लक्ष्य करना ऐसा कहने में आया है। नायक का लक्ष्य जब परिणाम करता है तो उसको परिणामी बोला जाता है और जिसका लक्ष्य करता है वो अपरिणामी है और परिणाम परिणामी होके अपरिणामी का लक्ष्य करता है उसको बोला जाता है अनुभूति।
अच्छा अगला प्रश्न राकेश जी को है उसमें उछलने की बात है
कौन उछलेगा राकेश जी
ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती है इसका अर्थ आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती है ऐसा मैं समझता था। आप कहते हो कि ज्ञान गुण में अनंत शक्तियां उछलती है कृपया स्पष्टीकरण कीजिए।
ऐसा मैंने नहीं कहा है आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्वयं टीका सप्त 47 शक्तियों के पहले ये विवरण लिखा है कि आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं ऐसा और उसके उदाहरण स्वरूप ये 47 शक्तियां हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ ज्ञान मात्र में ही ज्ञान भाव में ही 47 शक्तियां उछलती हैं आत्मा के अनंत गुणों में ये 47 शक्तियां नहीं अनंत अनंत शक्तियां अलग अलग उछलती हैं। वो सेम टाइप की भी हो सकती हैं दूसरे अलग अलग भी हो सकती हैं। शक्तियों में एक शक्ति का नाम है साधारण असाधारण साधारण असाधारण 26 नंबर की शक्ति है। कुछ शक्तियां तो सब द्रव्यों में साधारण है कुछ शक्तियां सब द्रव्यों में असाधारण है अलग अलग है विशेष गुण सामान्य गुण वाली बात और कुछ शक्तियां कॉमन है जो कुछ द्रव्यों में साधारण है और बाकी के द्रव्यों की अपेक्षा असाधारण है उनको हम उभय हमारे भाई साहब ने उभय नाम दिया है उसको साधारण असाधारण और उभय माने मिश्र तो ऐसी भी शक्तियां हैं। इसलिए जो है ये अकेले ज्ञान मात्र भाव में तो हमने एक बार आपको घटा करके बताई है अब आप अपने अपने प्रयास के द्वारा दर्शन में घटाओ चारित्र में घटाओ सुख में घटाओ और जितने गुण हैं आत्मा के हैं उन सब गुणों में अलग 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 आप शक्तियों को घटा करके समझें और यदि सामान्य तरीके से हम ये भी कहें अभेद विवक्षा से कि ये 47 शक्तियां आत्मा की हैं तो इसमें भी कोई दोष नहीं है अलग अलग गुणों से भी कह सकते हैं और आत्मा की भी कह सकते हैं इसमें दोनों में कोई दोष नहीं।
अपने पास एक माइक रखिए दूसरा सवाल भी आपके लिए है। हम छद्मस्तों को एक समय दर्शन उपयोग और दूसरे समय ज्ञान उपयोग होता है, अर्थात हमारे अस्तित्व के आधे समय में ही हम ज्ञान करते हैं। और बाबा गोपाल सभी को अपना आत्मा निरंतर जानने में नहीं आता है।
देखिए ये दो बातें अलग अलग हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ये क्रम से होते हैं छद्मस्त को, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। ये सर्व आचार्यों का सब इसमें एक मत है कि छद्मस्त को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग क्रमशः होते हैं और केवली भगवान को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग युगपत होते हैं। इसमें कुछ शंका करने की बात नहीं है, आपको जितना भी सोचना है इन आगम वचनों के रेफरेंस में इसके पीछे पीछे चलते हुए सोचना है, इसके विरुद्ध सोचना वो उचित नहीं है, वो निसंकेत अंग को भंग करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये इसमें दूसरी बात ये है कि दर्शनोपयोग का काल बहुत थोड़ा है और ज्ञानोपयोग का काल लंबा है, इसलिए आप आधा आधा तो बंटवारा नहीं कर सकते कि आधा दर्शनोपयोग में चला गया और आधा ज्ञानोपयोग में चला गया। ज्ञानोपयोग पूर्वक भी ज्ञानोपयोग होता है, क्या बोला, हर ज्ञानोपयोग के पहले दर्शनोपयोग होना जरूरी नहीं है। जैसे मति ज्ञान होता है वो दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, जो श्रुत ज्ञान होता है वो दर्शनोपयोग पूर्वक नहीं होता है, वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। दर्शनोपयोग पूर्वक मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान पूर्वक ज्ञानोपयोग होगा, अवधि ज्ञान में फिर दर्शनोपयोग आवश्यक है, अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान होगा, मन पर्याय ज्ञान में फिर आवश्यक नहीं है, मन पर्याय ज्ञान भी मन संबंधी जो मति ज्ञान होता है उस पूर्वक होता है, और केवल ज्ञान जो है उसमें तो प्रश्न ही नहीं है ये पूर्वकता का, वो तो युगपत होता है। इसलिए तीन ज्ञान, दो ज्ञान ज्ञान पूर्वक होते हैं, दो ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होते हैं, इसमें भी बेचारे दर्शनोपयोग को कम समय हो गया। इसलिए जो है आप इसको ऐसे समझें कि दर्शनोपयोग का काल बहुत थोड़ा है, लेकिन यदि आप निर्विकल्पता का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको बुद्धि पूर्वक दर्शनोपयोग के काल को एक्सटेंड करना चाहिए, ये आपके पुरुषार्थ की बात है। आप कहेंगे कि साहब इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ चलता है, देखिए दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग क्षयोपशम भाव के भेद हैं। क्षयोपशम भाव ये औदयिक भाव जैसा कर्माधीन नहीं है, क्षयोपशम भाव स्वाधीन भाव है। इस अपेक्षा से इसको इस दृष्टि से भी देखना चाहिए, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि आत्मा का जो संवेदन है 17वीं-18वीं नंबर की गाथा के रेफरेंस में, उसमें रेफरेंस में ये बात है कि दर्शनो जैसे ज्ञानोपयोग आत्मा को विषय बनाता है, ऐसे दर्शनोपयोग भी आत्मा को विषय बनाता है,
ये मूल है।
इसलिए आपको जो आत्मा को विषय बनाने वाला जो उपयोग है वो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों में कॉमन है, इसलिए वो धारा सतत चलती है, इसमें कोई दोष नहीं है। भले ही उसमें जानने की भाषा है, जानने की भाषा है, लेकिन वो जानने की भाषा का प्रयोग है भले ही, लेकिन उसमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों को साथ में सम्मिलित कर लेना चाहिए।
दोनों चैतन्य का व्यवहार,
दोनों ही चैतन्य के अनुविधायी परिणाम है, उसी का नाम उपयोग है और अनुभूति स्वरूप है, इसलिए ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों अनुभूति स्वरूप है। अनुभूति स्वरूप होने से वो अनुभूति जो है वो दोनों काल में, आत्मा की अनुभूति के बिना तो कोई जीव किसी काल में रहता ही नहीं है।
Okay, next question is for Chetan Bhai. आत्मा खरेखर पल को जानता है या नहीं जानता, ये विवाद में पड़े बिना ऐसा कहना यथार्थ होगा कि आत्मा खरेखर पल को जानता नहीं है, ये बात इस एक प्रयोजनभूत सत्य है और नए विवक्षा की कॉन्ट्रोवर्सी इसमें लाने की जरूरत नहीं है।
ये बात ऐसी है कि समय सार के कलश टीका के पहले कलश में लिखा है कि पर को जानने से ज्ञान भी नहीं होता है और पर को जानने से सुख भी नहीं होता है। एकांत पर को जानना वो अज्ञान है, स्वपर को जानना वो निश्चय पूर्वक भी है और उसको व्यवहार भी कहा जाता है। निश्चय पूर्वक कैसे है कि ज्ञान ज्ञान में रहके ज्ञान को जानते हुए स्वपर का जानना हो जाता है, उसको स्वपर को जाना ऐसा कहा जाता है। और व्यवहार की अपेक्षा में कोई भी ज्ञान में पर की अपेक्षा आती है तो उसको व्यवहार कहा जाता है। इसका अर्थ मेरी समझ में इतना है कि ज्ञान को एकांत से पर को जानने में सुख और आनंद नहीं आता है, स्व को जाने बिना का ज्ञान जो पर को जानने जाता है तो उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, ऐसा गुरुदेव का प्रवचन में आता है। तो गुरुदेव का प्रवचन में और भी स्व पर को जानने वाली बात भी आती है, मगर इसकी अपेक्षा जो मैंने पहले बताई इतनी हो सकती है।
इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये है, प्रतिगत विदर्क विचार जो होता है भावलिंगी मुनिराजों के जो श्रेणी चढ़ रहे होते हैं उनका उपयोग अर्थ व्यंजन योग संक्रांति होती है, कहीं से ज्ञानकृत होता रहता है लेकिन अनुभव नहीं छूटता है, सो दो उपयोग चालू रहता है। और वो जो दर्शन की भी बात आई थी तो वहां जब एक गे से दूसरे गे पर उपयोग जाएगा तो वहां पर भी दर्शन उपयोग होते ही है, ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था है। और दूसरी चीज के वास्तव में जानने जाना वो ज्ञान का स्वरूप नहीं, जानने में आना वो ज्ञान का स्वरूप वास्तविक, क्योंकि लक्ष्य पूर्वक ज्ञान वो राजयोग का काम, या राज से भिन्न जहां पड़ा ज्ञान है। तो जैसा केवल ज्ञानी जानने नहीं जाते और अनजाना कुछ रहता है, ये स्वरूप का अनुसंधान अपेक्षा से कि जो कोई भी ज्ञान है अपना भी अज्ञानी का भी न पर का भेदन करता है और न पर से तन्मय होता है और न पर को लक्ष्य पूर्वक जानता है। अभी अपन जो कहते ना लक्ष्य पूर्वक जानना ही ज्ञान का स्वभाव नहीं है, हम राग के कारण लक्ष्य पूर्वक उधर अटैच हो गए और उसी को विकल्प संज्ञा दी जाती है मोक्ष मार्ग में। ऐसा
अगला प्रश्न है उत्तम चर्चा के लिए, समय सार का था 6 और 11 की संधि करके दोनों में क्या समानता और क्या तफावत है वो समझाने की कृपा कीजिए।
माइक एक ही गाथा के लिए
प्रश्न इतना बड़ा है, आंसर तो 2 घंटे में होना चाहिए उसका पूरा, लेकिन हम दो संक्षेप में 2 मिनट में देना और दोनों की बात करनी है। देखिए 6वीं गाथा में शिष्य के इस प्रश्न का जवाब दिया है कि को असौ शुद्धात्मा इति चेत, आत्म शुद्धात्मा कौन, तो वहां तो केवल इतना बता दिया कि जो प्रमत्त नहीं है और प्रमत्त नहीं है, जो ज्ञायक भाव है इसमें वो शुद्धात्मा है जिसका अनुभव करना है, जो अनुभव का विषय है अनुभव में ही आता है और उसके अनुभव में आए बिना शुद्धात्मा को किसी ने जाना नहीं कहलाता। ये इतनी बात कह करके वो शुद्धात्मा कौन है जिसे जानना जरूरी है ये परिचय करा दिया, और शुद्धात्मा को प्रमत्त अप्रमत्त से रहित माने सर्व गुण स्थान भेदों से रहित एक अभेद ज्ञायक मात्र कहा है। शुद्ध इसलिए कहा है कि जो प्रमत्त रूप होवे तो अशुद्ध कहलावे, अप्रमत्त रूप होवे तो शुद्ध कहलावे, लेकिन ये प्रमत्त अप्रमत्त दोनों रूप नहीं होता है, इसलिए ये तो अनादि अनंत स्वभाव से नित्य शुद्ध है। हाँ, अनादि से नित्य शुद्ध है। ये कोई जैसे कोई जेल गया हो और जेल से छूट करके आवे तो हम पूछ सकते हैं कि तुम जेल से मुक्त कब हुए, लेकिन ये व्यक्ति जेल गया ही नहीं है और उससे पूछे कि तुम मुक्त कब हुए तो वो कहेगा हम गए कब थे जब हम मुक्त हो, तो ये ज्ञायक स्वभाव अशुद्ध हुआ कब था, प्रमत्त ही कब हुआ था जो अप्रमत्त हो, इसलिए ज्ञायक में ना प्रमत्तपना है ना अप्रमत्तपना है। अब एक बात आई कि जब नहीं है निषेध काय को किया, क्या ख्याल उसका कारण बता देते हैं। निषेध इसलिए किया कि प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों दशाएं आत्मा में मौजूद हैं और वे हैं 4 त्रिगुण की पर्याय, प्रमत्त दशा भी 4 त्रिगुण की पर्याय है और प्रमत्त दशा वीतरागता भी 4 त्रिगुण की पर्याय है, और आत्मा तो 4 त्रिगुण की निर्विकारी या निर्विकारी कोई सी भी हो पर्याय को जानता मात्र है, उन रूप जानने पर होता नहीं है, इसलिए आत्मा न प्रमत्त है और न अप्रमत्त है। प्रमत्त अप्रमत्त को जानने का ज्ञान तो आत्मा में निरंतर वर्तता है,
लेकिन अनुभूति में तो ना तो उसे पर्याय को प्रमत्त बने को देखना है, ना पर्याय के अप्रमत्त बने को देखना है, उसे तो ज्ञायक को ज्ञायक अनुभव करना है, ये होता है। तो छठवीं गाथा में तो इतनी बात कही। ग्यारहवीं गाथा में वास्तव में सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि लिखी। विधि ये लिखी है कि जो भूतार्थ नय को छोड़ेगा और निश्चय का आश्रय करेगा, इन अभूतार्थ नय को छोड़कर भूतार्थ नय का आश्रय करेगा, वो ही सम्यक दृष्टि बन सकता है। फिर स्पष्ट कर दिया, क्योंकि अभूतार्थ नय जो है वो अविद्यमान अर्थ को बताता है, जो वस्तु के स्वरूप में विद्यमान नहीं है उस अर्थ को बताता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि आत्मा में भेद करके व्यवहार समझाएगा, तो आत्मा में भेद है नहीं। भेद करना ये तो समझाना व्यवहार है, तुम्हारे समझाने और भेद करने से आत्मा में कभी भेद होते नहीं। अभेद में भेद किया तो वो व्यवहार हो गया। ऐसे ग्यारहवीं गाथा में जितने प्रकार के व्यवहार हैं, उनके जितने भेद हों, अरे मैं तो आपको क्या कहूं, शुद्ध निश्चय नय से परम पारिणामिक भाव ग्राही जो शुद्ध निश्चय नय है वो भी व्यवहार है। क्या कह रहे हैं? वो शब्द व्यवहार। कौन सा व्यवहार है? वो शब्द व्यवहार है,
जैसा भाई जी ने कहा था आत्मा में आत्मा का।
हाँ वो ही बात नहीं कह रहा हूँ। तो वो शब्द व्यवहार है, वो शब्द व्यवहार भी भूतार्थ नहीं। क्या कह रहे हैं? भूतार्थ तो वो है जो अनुभव में आता है, वो अनुभव करने वाली पर्याय उसमें एकाग्र होकर अनुभव करती है, वो है पर्याय की दृष्टि से अनुभव भूतार्थ। और द्रव्य का त्रैकालिक जो स्वभाव है वो तो स्वभाव से त्रैकालिक भूतार्थ, वो त्रैकालिक भूतार्थ है। त्रैकालिक के आश्रय से पर्याय में जो अनुभव प्रकटता है वो पर्याय का भूतार्थ बना है, और बाकी चाहे उसको शुद्ध को नाम लेके बोलो, कोई प्रकार का भी विकल्प करो, वो सारे के सारे विकल्प अवतार्थ। इसलिए भूतार्थ का आश्रय लेने वाले को सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दृष्टि कहा है। उसका प्रयोजन ये है कि तुम जितने भी भेद व्यवहार हैं उनसे दृष्टि हटाओ और एक अभेद आत्मा पर ऐसी दृष्टि लगाओ कि वो कहने की भी जरूरत न पड़े कि मैं ज्ञायक हूँ। अनुभव में आवे, और अनुभव में आवे वो बोला न जावे, और जो बोला जावे वो अनुभव में न आवे, ऐसे नियम है। इसलिए ये दोनों गाथाओं में, छठवीं गाथा में शुद्धात्मा का परिचय कराया, और शुद्ध किसको कहा कि जो उसका अनुभव करे, उस रूप अपने में एकाकार हो, उसको अनुभव कहा। लेकिन ग्यारहवीं गाथा में विधि बताई, तुझे अगर शुद्धात्मा का अनुभव करना है तो तू मलिन पर्यायों को देखना बंद कर। मलिन पर्याय हैं पर वे तेरे स्वभाव में नहीं, उनकी सत्ता है, सत्ता का निषेध नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता उनमें होगी, उनकी सत्ता मेरे स्वभाव में नहीं है। तो तुम अपने स्वभाव को तो पर्यायों से भिन्न देख, गुण भेदों से भिन्न देख, ऐसे में शब्द भेदों से भिन्न देख, अनुभव से एकमय होकर तन्मय होकर देख, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, और उसी का नाम भूतार्थ नय है। जो सम्यक दर्शन प्रकट करा दे, अनुभव करा दे, उसको भूतार्थ नय कहते हैं, बाकी सब नय अभूतार्थ।
भाई साहब ने बहुत अच्छा कोशिश किया। ये शुद्ध शब्द जो आता है छठी गाथा में तो आया ही है, 38 गाथा में भी है, 73 गाथा में भी है। इस अनुसंधान में भी आप खोज करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कैसा है। एक जगह का परद्रव्यों से भाव से भिन्न बने द्वारोपासित, और 38 गाथा में कहते हैं व्यवहारिक नव तत्व आदि इनसे भिन्न टंकों के लिए ज्ञाय स्वभाव, और 73 गाथा कर्ता कर्म में आते तो कहते हैं समस्कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त अनुभूति मात्र से शुद्ध है। ऐसे और भी मिलता है 51 गाथा में नयों के विकल्प से भी पार। तो ऐसे आप खोज करेंगे तो आपको बहुत सारे शुद्ध शब्द के अन्य प्रकार से अर्थ मिलेंगे।
राकेश जी, अगला सवाल। हर गुण की प्रत्येक समय में पर्याय होती है। अब हमारी अवस्था में हमारे अनंत गुण जो विकार रूप परिणाम नहीं होते हैं, उनकी पर्याय किस प्रकार की हो रही होगी? प्रश्न समझे ना?
जरूर मेरे को काबिल। हर गुण की प्रत्येक समय में पर्याय रहती है। अब हमारी अवस्था में हमारे अनंत गुण जो विकार को परिणमित नहीं होते हैं, उनकी पर्याय किस प्रकार हो रही होगी। विकार आप खुद ही वैसे इस प्रश्न में उत्तर गर्भित है, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि जो जिस गुण में विकार नहीं हो रहा है तो उसकी निर्विकारी पर्याय निरंतर चालू है। आपको ये और सुन करके आश्चर्य होगा कि हमारे जो चार द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चार द्रव्य तो निरंतर, इसमें कोई गुण में विकार होता ही नहीं है, ये निर्विकारी ही परिणमन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी आत्मा में, और एक दूसरी बात गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि विकार तो बहुत थोड़े से गुणों में होता है, गिनतियों की 21 नाम दिया है, मैं 21 नहीं कहना चाहता, 21 तो मतलब हम जैसे 47 नाम दे रहे हैं ऐसे 21 विकार, विकार भी बहुत गुणों में होता है, लेकिन उसको वो बहुत गिनती के गुण है, और इसके अलावा अनंत गुण है जो निर्विकारी पड़े हुए हैं। सामान्य गुण तो सब निर्विकारी ही है, विशेष गुणों में भी कुछ गुणों को छोड़ करके बाकी निर्विकारी ही है। ये तो मुक्ति के मार्ग की अपेक्षा जिन गुणों में विकार होता है उसी के अभाव पूर्वक हमारे को निर्विकार अवस्था प्रकट करनी है, इसलिए जो है उसको मुख्यता देकर के ये मुक्ति के मार्ग की चर्चा है, इसलिए उसमें निर्विकार। और एक बात जो चेतन भाई के व्याख्यान में आई थी आज दोपहर के व्याख्यान में, मैं थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, जिन गुणों में विकार होता है उन गुणों की भी जो कारण शुद्ध पर्याय हैं वो निर्विकार परिणमित हो रही है। श्रद्धा गुण की ये मिथ्या, और श्रद्धा जो मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा की जो पर्याय हैं ये तो स्थूल पर्याय हैं, लेकिन इन स्थूल पर्यायों के पीछे एक ऐसी कारण शुद्ध पर्याय पड़ी हुई है, ये श्रद्धा गुण की, जो निर्विकार है, और वो निर्विकारता में वो अपनी पूरी शक्ति के साथ निर्विकारी है। जैसे कि ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण के पीछे जो मति ज्ञान आदि, तो ये उसकी स्थूल पर्याय हैं, इनके पीछे जो कारण शुद्ध पर्याय है ज्ञान गुण की, वो प्योर शुद्ध, और उसको भी एक अपेक्षा से जब उसको पर्याय नाम दिया गया है शास्त्र में, वो पर्याय है, वो परिणमनशील है। द्रव्य अपरिणामी, कारण शुद्ध पर्याय परिणामी, पर्याय नाम दिया गया है उसका, और उसमें जो वो शुद्धता है वो कायम है, और उसी शुद्धता के बल पर, जो चेतन भाई की भाषा में बात कर रहा हूं, उसी शुद्धता के बल से ये जो सम्यक श्रद्धा की पर्याय हुई है, ये केवल ज्ञान की पर्याय जो बाह्य में प्रकट हुई है, ये सम्यक ज्ञान की पर्याय जो बाह्य में प्रकट हुई है, ये उसी के बल से ये प्रकट हुई है। इसकी थोड़ी सी चर्चा यदि आप पढ़ना चाहो तो परमार्थ वचनी का है या उपादान निमित्त की चिट्ठी है बनारसी दास जी की, उसमें भी इसके सूत्र पड़े हुए हैं। मिथ्या दृष्टि को भी उन्होंने ऐसा कहा है कि थोड़ा सा देखना आप, उसमें ये विषय आया है कि मिथ्या दृष्टि को भी ऐसी जो है वो उसमें पड़ी हुई है शक्ति में, बाह्य में तो मिथ्या श्रद्धा है, चारित्र उसमें जो ग्रंथि भेद आदि की चर्चा है, जो वो गर्भित शुद्धता की बात है, वो गर्भित शुद्धता मिथ्यात्व की अवस्था में है, ये गर्भित शुद्धता तो बिल्कुल व्यक्त प्रकट रूप में गर्भित शुद्धता को माना गया है, वो कारण शुद्ध पर्याय रूप गर्भित शुद्धता नहीं है, ये व्यक्त रूप से मिथ्या दृष्टि को व्यक्त रूप से गर्भित शुद्धता पड़ी हुई है, और उसी गर्भित शुद्धता के एक्सपांशन का नाम वो सम्यक्त है। ये मिथ्यात्व तो इसलिए कहलाया जाता है, कहा जाता है कि उसके पासिंग मार्क्स नहीं है। व्हाट इज द मैटर, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि उसने पढ़ा है, उसमें उसको श्रद्धा भी है, जो कुछ भी है जितना भी है उसमें हीना दिखता के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हम उसको सम्यक दृष्टि तब तक नहीं कहेंगे जब तक उसके 33 नंबर पूरे नहीं हो जाएंगे, पासिंग मार्क। वो गर्भित चौथे गुण स्थान में जाकर के वो गर्भित शुद्धता जो है वो कौन सी शुद्धता में कन्वर्ट हो जाती है, माने ग्रंथि भेद होता है, वो ग्रंथि भेद होता है
और उसके बाद में उसको संगत की प्राप्ति होती है। और इस शुद्धता जो फेल वाली जो शुद्धता है ना, इसको इसलिए ज्यादा महत्व नहीं दिया गया आगम में, क्योंकि ऐसा अभव भी कर सकता है, 32 नंबर तो अभव भी ला सकता है, इसलिए वो 32 नंबर तक को कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन आप ये मान के चलना कि वो 32 नंबर में और 33 नंबर में बस एक नंबर का अंतर है, 33 नंबर का अंतर नहीं समझना, बस एक नंबर का अंतर है, लेकिन वो एक नंबर को पार करना में वो भव्य से अभव्य होना अनिवार्य, अभव्य से भव्य होना अनिवार्य है। और भी शुद्धता और भी जो उसके लिए कारण लब्धि की पात्रताएं आदि होती हैं, उसको थोड़ा विचार करना। मैंने अब ऐसा विषय छेड़ दिया है कि अब इसमें प्रश्न और बनेंगे।
चेतन भाई कर रहे
हैं वो परिणमन जो है ना, कार्य शुद्ध पर्याय,
पर्याय नाम,
तो पर्याय नाम है इसलिए उसमें परिणमन है, ऐसा जो आपने बोला तो उसमें वो परिणमन में आपका सोच क्या है, ऐसा थोड़ा सबका विचार होगा, मेरे को ऐसा लगता है जो प्रश्न भी उधर से आने लगा है, तो उसमें आपका विचार पहले आप प्रदर्शित कर दीजिए।
आप बता दो थोड़ा सा, मैं आपको
इसमें ऐसा है कि परिणमन कहीं भी शब्द आए ना तो सभी परिणमन को क्रियावाची नहीं समझना, क्योंकि उसमें अंदर में कोई क्रिया नहीं होती है, अंदर में तो निष्क्रिय परमात्मा है, गुण भी निष्क्रिय है, कारण शुद्ध पर्याय नाम दिया है, मगर वो पर्याय माने क्रिया नहीं है अंदर, वो तो पारिणामिक भाव से है, तो उसको परिणमन शब्द भी कहीं भी आ जाए तो भी अपने को समझना उसको निष्क्रिय समझना, उसको क्रिया वाली नहीं समझना, वो निष्क्रिय है, उसे जानना देखना होता रहता है, वर्त रहा है, उसमें कोई क्रिया नहीं है,
इसीलिए पर्याय कह रहा हूँ।
हाँ वो ठीक है, वो बराबर है, वो पर्याय वो बराबर है, मगर उधर अपन तो समझते हैं, मगर परिणमन का नाम क्रिया ही नहीं है सब जगह पे, और वहाँ क्रिया की बात नहीं है, परिणमन की बात है तो भी क्रिया की बात नहीं है,
होने को भी परिणाम न कहते,
परिणामी शब्द भी क्रिया का वाचक नहीं है, परिणमन का वाचक।
एक दूसरा राकेश जी, उसमें जो अपना परसेंटेज कही श्रद्धा में, दैट्स नॉट एप्लीकेबल, एक्चुअली श्रद्धा में एप्लीकेबल नहीं है, श्रद्धा या तो 100% मिथ्या होती है, 100% सम्यक होती है, चारित्र में ये सराग वितराग से उसमें परसेंटेज व्यक्ति है, श्रद्धा में नहीं। आपका क्या कहना चाहिए? 33
में पास होने का आइडिया अच्छा लगा मेरे को। अगला सवाल उत्तम सर जी के लिए, पूज्य गुरुदेव श्री ने कहता छह के प्रवचन में ऐसा क्यों कहा कि अन्य द्रव्य से भिन्न में विचारी भाव विकारी भाव नहीं लेना?
क्या है अंदर,
वापिस पूछता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री ने गाथा छह के प्रवचन में ऐसा क्यों कहा कि अन्य द्रव्य से भिन्न में विकारी भाव नहीं लेना?
परद्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है ना, तो उसमें राग से भिन्न नहीं लेना, ऐसा गुरुदेव ने बोला।
अन्य द्रव्य से भिन्न में विकारी भाव नहीं लेना, हाँ ठीक है, ये अन्य द्रव्य से भिन्न में विकारी भाव नहीं लेने का अर्थ ये है कि यहाँ तो स्वद्रव्य से अभिन्न है और परद्रव्य से भिन्न है, तो जो परद्रव्य में किन को लेना, समस्त जीव द्रव्यों को ले लो, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल को ले लो, ये सब परद्रव्य में चले गए अजन, लेकिन अपने स्वभाव से या अपने स्वरूप से अभिन्न है, तो वहाँ गुण भी है पर्याय भी है, अनुभव करने वाली पर्याय भी है लेकिन उसका लक्ष्य नहीं, लक्ष्य करने वाली वो पर्याय है और स्वभाव का लक्ष्य करती है, गुण भी मौजूद है लेकिन गुण भेद नहीं है, वहां भी निर्विकल्प दशा है, इसलिए अनुभूति में जो प्रभाव है विकारी भाव है वो तो बहुत स्थूल विषय है, ये विकारी भाव है, वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां हम प्रमत्त की परिभाषा करेंगे तो पहले गुण स्थान से छठवें गुण स्थान के बीच होने वाले भावों को प्रमत्त भाव कहा है, सातवें गुण स्थान से लेकर के चौदहवें गुण स्थान तक होने वाले भावों को अप्रमत्त भाव कहा है, इसलिए जब हम प्रमत्त अप्रमत्त से भिन्न दिखाएंगे, उस रूप नहीं होता है माने रागादि रूप नहीं होता है, रागादि से भिन्न रहता है, स्वभाषुभ भाव रूप नहीं होता है, क्योंकि स्वभाषुभ भाव जो है वे वास्तव में देखे जाएं तो जड़ भाव, क्योंकि उनमें स्वभाव पर को जानने की सामर्थ नहीं होती है, इसलिए आत्मा स्वभाषुभ भावों से भी भिन्न है,
लेकिन अनुभव कराने के लिए उन्होंने यहाँ कहा कि इन सर्व द्रव्य के भाव से भिन्न जानना, क्योंकि ये जो कथन है छठवीं गाथा में ये द्रव्यार्थक नय का कथन है, द्रव्यार्थक नय के कथन में उन द्रव्यों से भिन्न करना ख्याल में आए ना। और जो 73 गाथा में जो शुद्ध की व्याख्या की है वहां षट कारक प्रक्रिया प्रकीर्ण उत्तीर्ण होने के कारण उसको शुद्ध कहा, तो वहां षटकारक की प्रक्रिया पर्याय में होती है, द्रव्य में नहीं हुआ करती षटकारक की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया जो षटकारक रूप होती है वो पर्याय में होती है, और पर्याय स्वयं ही जब अपने द्रव्य स्वभाव में मग्न होती है तन्मय होती है तो षटकारक की जो विकल्पात्मक प्रक्रिया है उससे पार हो जाती है और वहां फिर वो शुद्ध कहलाता है, और उस शुद्धि से वास्तव में आश्रव रुकता है और संवर भाव प्रकट होता है, ऐसी वो दशा होती है। इसलिए यहाँ जो कहा है अन्न द्रव्य से भिन्न मैं विकारी भाव नहीं लेना, क्योंकि उसकी भिन्नता की चर्चा उन्होंने पहले जीव और अजीव का स्वरूप बताने में कर दी, इसलिए इसको अलग से फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा अभिप्राय नजर आता है स्वामी जी का। यदि कोई और अभिप्राय हो तो दूसरा बता।
इसमें जो अन्य द्रव्य का भाव बोला गया है ना, वो जीव के अलावा जो आपने बोला वो पुद्गल द्रव्य तो उसमें लिया ही है, मगर पुद्गल द्रव्य के निमित्त से अपनी पर्याय में जो विकारी भाव होता है वो यहाँ नहीं लेना, ऐसा गुरुदेव का काम ऐसा बोला गुरुदेव, ये प्रश्न ऐसा लगता है
ना, तो उसमें ये क्लियर करें क्यों नहीं लेना।
हाँ क्यों, क्योंकि उसमें अन्य द्रव्य के भाव बोले है तो स्वद्रव्य है ना जीव, तो
इसका खुलासा पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से स्वयं सुनने का मिला। परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का आश्रय किया तो राग उसको उत्पन्न होते ही नहीं है, इसलिए लेने की जरूरत नहीं, ऐसा गुरुदेव ने स्वयं फरमाया। परद्रव्य थी भिन्न उपवासवा मा आवतो हुआ थी शुद्ध छे, तो पर से भिन्न आत्मा पर दृष्टि गई तो ऐसा थोड़ी कि पर से भिन्न दृष्टि करेगी तो बीच में राग खड़ा हो जाएगा, तो राग उसको उत्पन्न हो गई नहीं इसलिए उससे भिन्न लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने
कहा।
अन्य
द्रव्य के भाव में लिखा है, अन्य द्रव्य भाव में उसकी ताकत उसकी अनुभाव
भी कहा था,
वो भावों से भिन्न कहा,
जो भी प्रश्न तो विकारी भाव का है,
विकारी
प्रश्न श्री उत्तम चंद जी के लिए है। 1 से 6 गुणस्थान तक प्रमत भाव है अर्थात शुभाशुभ भाव रूप होता है, तथा 7 से 14 गुणस्थान में अप्रमत भाव है अर्थात निर्विकल्प भाव या शुद्ध भाव रूप होता है, अतः चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति कैसे हो सकती है। 1 से 6 में प्रमत भाव है अर्थात शुभाशुभ भाव होता है,
बहुत बढ़िया।
7 से 14 में गुणस्थान तक अप्रमत भाव है
बिल्कुल ठीक
अर्थात निर्विकल्प भाव है,
तो
चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प भाव अनुभूति कैसे हो
सकती है।
हाँ हाँ देखिए देखिए
माइक चालू कर,
प्रमत्त भाव में अनुभूति होती है, पहले ये बता देते हैं, यहाँ प्रमत्त भाव है वो वास्तव में देखा जाए तो वो चारित्र गुण की पर्याय, अनुभूति होने में बाधक चारित्र नहीं होता, चारित्र गुण नहीं होता, अनुभूति में बाधक दर्शन मोह होता है, दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कषाय भाई ये ही अनुभूति में बाधक होते हैं, लेकिन वो जो बचा हुआ चारित्र मोह है उसका जो परिणाम है वो प्रमत्त रूप भी होता है और वो अप्रमत्त रूप भी होता है, शुभाशुभ भाव रूप जो होता है वो प्रमत्त है और वीतराग भाव रूप जो होता है वो अप्रमत्त है, तो वीतरागता जीव के मौजूद हो या राग मौजूद हो वो अनुभूति में बाधक नहीं है, बाधक तो एक राग मेरा है मेरा जो रूप है मेरा स्वभाव है ऐसी मान्यता अनुभूति में बाधक है।
माने शुभाशुभ भाव मिथ्या तो नहीं है,
शुभाशुभ भाव मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व तो अभिप्राय में रहता है, शुभाशुभ भाव तो सम्यक दृष्टि को होता है, अगर शुभाशुभ भाव मिथ्यात्व का कारण हो तो फिर सम्यक दृष्टियों के होता है वो मिथ्यात्व का कारण हो जाए।
शुभाशुभ भाव होते हुए अनुभूति हो सकती है क्या?
देखो शुभाशुभ भाव होते हुए अनुभूति हो सकती ये नहीं कहा है, ये कहा है कि वो जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय अभी तुम्हारे से उपयोगात्मक नहीं है, लेकिन कोई चारित्र निर्मल नहीं हो गया है सम्यक दृष्टि का,
क्या कहा?
मेरे को इसका जवाब देना, सुभाषु भाव होते हुए अनुभूति होती है, नहीं प्रमाद है ही, आपने प्रमाद तो मान लिया, प्रमाद के होते हुए अनुभूति हो सकती है,
तो प्रमाद
भाव होते हुए अनुभूति क्यों नहीं?
प्रमाद दो प्रकार का होता है, एक कषाय का मंद उदय चलता है वहाँ वो बाधक नहीं बनता है, और एक कषाय का तीव्र उदय होता है वो सुभाषु भाव रूप होता है वो बाधक बनता है।
तो मंद कषाय में हो सकती है अनुभूति?
हाँ, मंद कषाय बनी रहती है लेकिन इनके ख्याल का विषय नहीं बनती वो,
अबुद्धिपूर्वक।
हाँ, वो अबुद्धिपूर्वक रहती है।
चौथे गुणस्थान में अनुभूति होती है, यानी अनंतानुभूति का भाव हो गया, इस अपेक्षा उसे अप्रमत्त क्यों नहीं कह सकते? चौथे गुणस्थान में भी उतना आंशिक अप्रमत्तता हो गई ना, फिर विचारता हो गई।
देखो ऐसा है, मुख बने तो प्रमत्त गुणस्थान एक ही है, मुख बने से, और वो छठवें गुणस्थान को प्रमत्त गुणस्थान कहते हैं, सुनो। लेकिन वो अंत दीपक है शब्द, वो शब्द जो आया है ना प्रमत्त शब्द, वो अंत दीपक है। अंत दीपक होने से अपने अपने गुणस्थान के योग प्रमाद रहता है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन जो छठवें गुणस्थान में होता है वो पांचवें में नहीं होता है, वो चौथे में नहीं होता है, नीचे के गुणस्थानों में नहीं होता है। वो ही प्रमाद हो उसी जाति का, ऐसा नहीं है, लेकिन हर गुण स्थान में प्रमाद रहता है, वो उस गुण स्थान के योग प्रमाद होता है और छठवें तक होता है, और वो बुद्धिपूर्वक होता है। क्या ही ख्याल में? अबुद्धिपूर्वक तो अगर वो तुम्हारे से राग बचता है सातवें गुण स्थान से लेके दसवें गुण स्थान तक, वह अबुद्धिपूर्वक राग तो चलता है और मंद उदय रूप चलता है, लेकिन वह प्रमत्त नाम नहीं पाता, क्योंकि उपयोग जो है स्वभाव में सावधान रहता है। स्वभाव की सावधानी जहाँ तक है वहाँ तक अप्रमत्त है, और जहाँ स्वभाव से असावधान होके सुभाषु भाव में आया वहां से वो प्रमत्त कहलाता है, और पहले से लेके छठवें तक ये दशा होती है। मुख बने अनुभव की दशा में भी वहां कोई राग चला नहीं गया है, केवल एक कषाय का उपशम हुआ है, बाकी कषायें सत्ता में विद्यमान है और उनका मंद उदय भी चल रहा है।
ऐसा अगला सवाल भी पंडित जी प्रथम चंद के लिए है, ये दो पार्ट क्वेश्चन है, पहले एक पढ़ूंगा उसके जवाब दीजिए, फिर दूसरा पढ़ूंगा। मंदिर जी में भगवान के सामने स्थापना करने की क्या आवश्यकता है?
जरूरत ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए, पंच कल्याणक से स्थापित हो गई मूर्ति, अब तुम क्या चावलावल में स्थापित करते, लोगों में स्थापित करते हो? ये सच पूछो, अज्ञानता।
दूसरा पार्ट है, इसमें नतीशोधित की बात है, आज की विधान की मैं सुना होगा इन्होंने कुछ भी
बोली,
स्वप में चंद्र सूर्य नहीं है, अतः जहाँ चैत्र वैशाख या फागुन आदि महीने भी महीने के भी व्यवस्था भी नहीं होगी, फिर भी वे फागुन महीने आदि में अष्टालिका के दिनों में नंदीश्वर दिन जाने हैं जाते हैं, ऐसा कहना क्या उचित है?
कैलेंडर नहीं तो फागुन कैसे पता?
हाँ, सही 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 बात है, ये सबसे बड़ी ये व्यवस्था वहाँ की नहीं है, ये यहाँ की व्यवस्था वहाँ पे आरोपित है, समझ में आया कि नहीं?
क्या बात,
अपने यहाँ जो अष्टानिका पड़ती है वो कार्तिक फागुन साल के अंत आठ दिन मान, और उसी समय देवता भी वहाँ जाते हैं। क्या
हिसाब से हो जाते
हैं? तो अपने हिसाब से उसको अपन वे आठ दिन बोलो और कार्तिक सावन आदि नाम लो, वहाँ कोई ये महीने चलते नहीं है, ये सिक्का तुम्हारा यही चलता है भरत क्षेत्र।
उनको पता कैसे चलता होगा?
उनको
पता कैसे चलता होगा?
बिना पता चले सहज ही उनकी परिणति इस प्रकार की वर्ष में तीन बार होती है,
उनका प्रोग्राम चार चार महीने के हिसाब से फिक्स रहता है।
हाँ,
उसको अपने यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं।
नहीं नहीं, फिक्स विक्स नहीं भाई, सहज होती है,
फिक्स ही होती
है। इसके बारे में आप कुछ कल कुछ भी आए पूजा में तो जरा बता दीजिए उनको,
यहाँ चर्चा हो चुकी है बहुत उज्ज्वला शाह की उसमें। हाँ। और दूसरे प्रकरण में हुई वो बहुत बढ़िया था, जिस प्रकरण में उन्होंने चर्चा की थी।
एक स्थापना निक्षेप के संबंध में पंडित जी ने जो जवाब दिया उसमें एक जवाब ये भी चाहिए है कि फिर जो हम लोग पूजा में स्थापना का छंद पढ़ते हैं उसके बाद में अत्रा उत्तरा उत्तर संभोषट वो करते हैं, सब अत्र तिष्ठ करते हैं, अवतर अवतर संभोषण करते हैं, तो इन सब का फिर मतलब क्या है? इनको भी बंद कर देना चाहिए?
नहीं नहीं नहीं, सुनिए,
ये बंद नहीं।
देखिए, वहाँ जब प्रतिष्ठित मूर्ति सामने मौजूद है तो स्थापना की जरूरत नहीं, लेकिन वो स्थापित मूर्ति वो तुम्हारे धातु और पाषाण में स्थापित है विधि पूर्वक। हमारे हृदय में कोई विधि पूर्वक स्थापना नहीं हुई है, हमारे भावों में उसकी स्थापना करनी है। तो उनके स्वरूप को देखकर उसे हम बुलाना चाहते हैं अंदर। अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निहितो भवत, मेरे निकटवर्ती हो। ऐसी इस विधि से भाव स्थापना अपने परिणामों में की जाती है और प्रसन्नता के प्रतीक जो पुंज है पुष्प है वे थाली में क्षेपण किए जाते हैं। एक एक पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, नहीं तो उसमें कल्पना हो जाती कि ये देव हो गया, स्थापित देव हो गया, अतदाकार देव हो गया, लौंग भी अतदाकार देव हो गया। उसके फिर तुम पांव पड़ोगे और मालूम नहीं कितनी विधि करोगे, फिर क्योंकि एक जगह जहां मिथ्यात्व चालू हुआ उसकी परंपरा में हजार क्रियाएं मिथ्यात्व की होती है। ऐसा है
सूचना में जब आपने पूजन में सुना भी होगा, अगर आपका लक्ष्य गया होगा तो यही कहा जाता है भगवंतों को अपनी परिणति में आह्वान करने के लिए सभी खड़े हो
जाए।
ये सारी क्रियाओं को भावात्मक रूप प्रदान करना ये अपने मिशन की खूबी है।
बस
अपने यहाँ ये पद्धति है।
अगला प्रश्न है चेतन भाई के लिए। बुद्ध का आपकी पर्याय परिणामिक भाव में योग्यता रूप से मिली हुई है, इसका क्या अर्थ है वो समझाइए।
उसका अर्थ ये है कि भूतकाल की पर्याय कोई व्यय होकर बाहर नहीं चली जाती है, उसका जो भाव अंदर से आया था वो अंदर ही जाता है। वो केवल ज्ञान में भी पता चलता है कि भूतकाल में इस पर्याय रूप में परिणमा था, तो वो योग्यता अंदर बनी रहती है। योग्यता वाली पर्याय नहीं है अंदर, वो परिणामिक भाव में ही वो गुथा गई है, उसको योग्यता बोला जाता है।
अगला प्रश्न भी चेतन भाई के लिए है। दृष्टि का विषय आत्मा का स्वभाव समझकर उसकी महिमा में दृढ़ता करते जाना यही पुरुषार्थ है, ऐसा आपने समझाया। क्या पुरुषार्थ ही इस विधि में है? क्या पुरुषार्थ की इस विधि में कर्तापना छिपा हुआ है?
नहीं, ऐसे कर्तापना नहीं होता है। वो समझ पूर्वक जब पुरुषार्थ चलता है ना, उसको कर्तापना नहीं बोला जाता है। पहले यथार्थ समझ आती है, वो द्रव्य कैसा है, द्रव्य में क्या क्या भरा है, वो सब पहले समझ आती है, फिर उस तरफ पुरुषार्थ चलता है। तो उस तरफ पुरुषार्थ चलता है उसमें कर्तापना नहीं आता है, वो तो अकर्ता तरफ का पुरुषार्थ है, तो उसमें अकर्ता स्वभाव ही दृष्टिगोचर हो जाता है।
अगला प्रश्न है हेमचंद जी के लिए। मुझे गुरुदेव श्री के नित्य क्रम में सदा 175 बोलों का मर्म समझाने के लिए हम दूर दूर से आए हैं, समझने के लिए। अलिंग्रहण के 20 बोल पर आपका अंतिम प्रवचन कल है, हमें इन 20 बोलों का मर्म कुछ गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर समझाने की कृपा करें।
आज है कल
प्रश्न है कि आदेश है?
आदेश है, आदेश स्वीकार करता हूँ,
रिक्वेस्ट है।
बात ये है, हमको फोन घंटा मिलता है और रोकर के वक्ताओं का 1 घंटे नंबर होता है, एक चीज। दूसरी चीज, गुरुदेव के प्रवचन इसमें करीब 9-10 प्रवचन है, जितना विस्तार करो उतना है। लोग पूछते हैं तो फिर कुछ और बताने में आ जाता है राय अर्थात, और 45 मिनट में जितना हो सकता है मैं करता हूँ। और कल अवश्य एक एक बोल के द्वारा आपको उसका मूल सारंश जो है वो बता दें।
गुरुदेव का चाहिए
है?
आपके पास और कम टाइम
और कम टाइम देते और क्या कर सकते।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपने जो टाइम दिया उसके लिए बैठने कर रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सत द्रव्य और द्रव्य सत में क्या अंतर है, कृपया समझाइए।
हाँ, मैंने ये बात कही थी, सत को जब भेद करके देखा तो उसमें द्रव गुण पर्याय द्रव्यम आता है ना, सत द्रव्य लक्षण गुण पर्याय द्रव्यम उत्पाद में द्रव्यतम सत, एक सत का ही एक तीन प्रकार से उभरना है। तो अपने को गुण पर्याय के ऊपर सत पाना कैसे, तो जो ये बोला जाता है न्याय की भाषा में सत द्रव सत गुण सत पर्याय, और जब ये भाषा हो जाती है द्रव सत गुण सत पर्याय सत, तो न्याय उसको इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि जैसे कोई अलग सत हो गया, ख्याल में से नजर हुआ वो अपेक्षा से। लेकिन जब अपन यहाँ पर ये क्योंकि पदार्थ अभिन्न एक सत है,
तो उसके अंदर में ही तो उसको एक एक को अलग अलग दिखाते हैं जब, तो तीनों को अलग अलग उनका स्वरूप, जब तीन वाचक शब्द हैं द्रव गुण और पर्याय, तो तीनों का वाच्य भी आपको एक दूसरे से निरपेक्ष बताना पड़ेगा। तो ये अध्यात्म में बराबर सत है, उसको बोलने में कोई बाधा नहीं, द्रव सत, गुण सत, पर्याय सत, ऐसा है। यहाँ में मतलब अभेद सत है, तो दूसरा ऐसा न समझ जाए कि तीन सत है वहां मिलकर के एक अभेद सत है, वो अपेक्षा है बस उतनी।
अगला सवाल भी आपके लिए जी, अर्थ क्रिया कारक की व्याख्या संक्षिप्त में कहिए।
सामान्य गुणों में वस्तुत्व नाम का जो गुण है उसको आप सब हम जानते हैं, किसको कहते हैं वस्तुत्व गुण, प्रयोजन भूत क्रिया। तो वो पदार्थ माने, जैसे अभी जो बात चली ना, इसमें से निकलता है कि जब पारायणिक भाव बिल्कुल निष्क्रिय है, उसमें कोई अर्थक्रिया नहीं, तो हमारे किस काम का, ऐसा निष्क्रिय नहीं लिया, उसमें वो सामर्थ्य जिसको कारण शुद्ध पर्याय के द्वारा कहा जा रहा है, जब वो सामर्थ्य हर समय उसमें विद्यमान है, अगर वो सामर्थ्य नहीं होती तो ये जानना देखना रूप अर्थ क्रिया भी नहीं चलती। और जो जो द्रव्य है उनका यदि नेचुरल फंक्शन का कोई अंश अवयव प्रकट ना पाया जाए तो उस पदार्थ का कहना चाहिए परिचय भी नहीं मिल सकता। तो जीव का ज्ञान दर्शन भी जो प्रकट है, ये जीव का स्वभाव का अंश और इसलिए जानना उसकी अर्थ क्रिया है। जो दृष्टांत देते ना मिट्टी का घड़ा, तो उसका घड़े का दे दिया, वो पढ़ते हैं अपन के जल धारण करना, क्या प्रयोजन है घड़े का, जो कोई उसको लिक्विड के जल को धारण करे, ये स्थूल दृष्टांत है। ऐसे हर पदार्थ का अगर उसमें कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन वो अपेक्षा से अर्थ क्रिया का रूप नहीं है, तो वो पदार्थ अपने उपयोग का नहीं गिना जाता। ये अपने को जो ध्येय पूर्वक जो बात करते हैं ना अपन, अरे क्या अपन किस लिए कर रहे, ये सब के मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए, तो किसमें है, तो उसके आश्रय से जिसमें पर्याय में जो नहीं है वो प्रकट हो जाता है, तो उसमें वो सामर्थ्य और ऐसा अपने में प्रणमन हो जाना। अगर ऐसा नहीं है तो क्रिया नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसलिए उस कारक साकल ने इसका बहुत महत्व दिया है।
अगला प्रश्न है चेतन भाई के लिए, क्या स्वभाव और स्वरूप में कुछ तफावत है कि दोनों एकार्थ है?
स्वभाव माने कि अपना भाव वो गुण से है, और स्वरूप माने कि वो अपना स्वभाव है वही उसको स्वरूप बोलते हैं, स्वभाव में गुण आ जाते हैं, और वैसे तो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है।
एक मेरे प्रश्न में वो भी था जो बैंसरी ने एक बड़ा अच्छा बोला है कि वो द्रव क्या जो अपने कार्य के लिए क्या करे, बीजानी राय जरूर जो, तो वो अर्थ क्रिया का मतलब है कि अपने में जो है अपने कार्य के लिए, केवल अपने में से प्रकट हो, ऐसा अपना उसके अंदर में
स्वरूप आदि से प्रश्न। अगला प्रश्न है अभय जी के लिए, दृष्टि की खेच नहीं और पर्याय का द्वेष नहीं, वह समझाइए।
दृष्टि की खींच नहीं है का मतलब ये है, ये दोष दृष्टि का नहीं है, दृष्टि के साथ में ज्ञान के निर्णय की विपरीतता जब होती है तो उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि दूसरी बातों के प्रति अरुचि होती, जो अन्य जो द्रव्य गुण पर्याय की बात है कि ये बात है तो उसके प्रति अरुचि होती है। मेरे कई जो निकटवर्ती मित्र हैं वो किसी थर्ड पर्सन की बहुत इस बात की नहीं तारीफ करता, अरे साहब वो दृष्टि के विषय के अलावा दूसरी बातें ही नहीं करता, तो ये रुचि का प्रतीक है, ये भी हो सकता है कि वो प्रयोजन भूत की ओर ज्यादा मतलब आकर्षित होता है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उसको पर्याय से द्वेष हुए या पर्याय पक्ष का सर्वथा निषेध उसके अभिप्राय में वर्तता हुए तो उसको दृष्टि की खेच बोलते। तो दोनों बातें लालचंद भाई एक साथ लेते थे कि ज्ञान में मध्यस्थ होना चाहिए, यानी और एक बात और है कि जो जैसा है ज्ञान उसे वैसा जानता है, उसको पक्षपात नहीं कहते। अगर कोई करोड़पति आवे तो हम उसे करोड़पति के रूप में ही जानेंगे, और कोई गरीब मानस आवे तो हम गरीब मानस के रूप में ही जानेंगे। इसका मतलब कोई गरीब से द्वेष हो गया, करोड़पति की महिमा आ गई, ऐसा नहीं है। तो ज्ञायक भाव महिमावंत है, इसलिए ज्ञायक भाव की महिमा उस रूप में ज्ञान जानता है, वो कोई
ध्रुव या खेच की बात नहीं है, ख्याल में आया ना, और पर्याय का जो स्वरूप है क्षण भंगुर है, तो ज्ञान उसे वैसा जानता है, एक दोनों को जान करके राग द्वेष रहित हो करके वो स्वरूप का अवलंबन बनता है। और गहराई से अनेक विषयों में खासकर स्वानुभूति दर्शन में आपको इस विषय का खुलासा विशेष मिलेगा, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं।
अगला सवाल भी अभय कुमार जी आपके लिए है, मरने के बाद शरीर से आत्म प्रदेश आंख से बाहर निकलते हैं, ऐसी कथनी है, फिर जो आत्म प्रदेश दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं वो कौन से माध्यम से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं?
नौ द्वारों में से किसी भी द्वार से प्रवेश निकल जाए, विशेष विषय भाई साहब खुलासा।
आंख से ही निकलते हैं सका?
नहीं नहीं, देखिए आत्मा के जो प्रदेश हैं वो पूरे शरीर में व्याप्त है, आयोजन में तो जब ये निकलते हैं तो वो वाकई में देखा जाए पूरे शरीर में से ही निकल जाते हैं, एक एक छेद है अपना, एक रंध्र इसका क्या नाम चमड़े का या रोम का, वहाँ भी आत्मा के प्रदेश हैं, तो इसलिए वो ऐसा निकले तो फिर मालूम क्या हो, वो एक समय या दो समय तीन समय नहीं, ज्यादा समय तो निकलने में लगा जाएंगे उसके, आगे में एक दो समय तीन समय में तो उसको नियम से पर्याय धारण कर लेनी है, दूसरी पर्याय में पहुंच जाना है, और इधर ही क्रम से मुंह से निकले तो जल्दी पूरे नहीं निकल पाएंगे, भटक जाएंगे आगे सुनिए आगे, इसलिए एक कल्पना झूठी है, सिर्फ वे आत्मा के प्रदेश एक साथ बाहर निकल जाते और जहां जन्म लेना है वहां एक साथ पहुंच जाते और जिस पर्याय का जो आकार मिलने वाला है उस आकार रूप पर बन जाते हैं, ऐसा
नहीं उसको ये जो आपने बोला ना बालों से निकलते हैं,
बालों से नहीं सब जगह हैं, जब बोले
वहाँ से भी नहीं निकलते,
नहीं वहाँ से नहीं निकलने की बात है बोलने में जो
मूर्ति है मतलब मूर्ति कहीं से नहीं,
कहीं से कहीं से प्रश्न ही नहीं, सर्वांश से निकल जाता है।
अगला सवाल भी उत्तम चंद के लिए है, जब जीव स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति के कारण गमन करता है तब धर्म द्रव्य निमित्त बनता है, तो उसी समय अखंड धर्म द्रव्य निमित्त निमित बनता है कि
सिर्फ उतने प्रदेश
जहाँ चलते हैं वहाँ ही प्रदेश के लिए निमित्त बनता है
ना, मैंने थोड़ा बोलना क्या कहने जा रहे
जैसे अपन कमरे से यहाँ तक आए
हाँ।
तो धर्मास्तिक आएंगे यहाँ जो प्रदेश हैं
हाँ।
वो ही अपनी गति में निमित्त बने हाँ। ऐसा माने हाँ। तो धर्मास्तिक आय खंडित हो गया
हाँ।
तो पूरे असंख्यात प्रदेश जो लोकाकाश प्रमाण लोक में व्याप्त हैं वो सारे के सारे अपने वो निमित्त बनेंगे गति में या उतना ही बनेंगे जितने में अपन आए।
सुनो ऐसा है कि निमित्त पाना जो धर्म द्रव्य में है, धर्म द्रव्य अखंड है, कैसा है अखंड है, लोकाकाश प्रमाण उसके असंख्यात प्रदेश हैं लेकिन है अखंड, तो अखंड के किसी भी अंश में अगर निमित्तपना होगा तो वो निमित्तपना अंश का नहीं कहलाएगा, वो निमित्तपना अखंड का कहलाएगा, इसलिए पूरा का पूरा धर्म द्रव्य उसमें निमित्त बनता है। अभी दूसरी रिवर्स बात बता दें वो ये है कि कालाणु एक ही प्रदेश जितना होता है, सही में आएगा नहीं, और लोकाकाश में लोकाकाश में छह द्रव्य मौजूद है तो छह द्रव्य के परिणमन में वो प्रति समय निमित्त बनता है, अलोकाकाश में तो कालाणु है ही नहीं, सह में आएगा नहीं, और परिणमन उसका होता है तो कौन निमित्त बनता है?
लोकाकाश के कालाणु,
लोकाकाश के कालाणु अलो पूरे अलोकाकाश को निमित्त बनते हो, एक कालाणु निमित्त बनता है ऐसा नहीं, सर्व कालाणु उनके परिणमन के निमित्त है।
और लोकाकाश में लेकिन जीव उद्गलों में,
जीव उद्गलों में, जीव उद्गलों में भी ये नहीं समझना कि जो निकटवर्ती हमको निमित्त है, वहाँ सब में निमित्त बनने की योग्यता विराजमान है, और वो जो तुम्हारा सब परिणमन चल रहा है वे सर्व परमाणु जो लोकाकाश में भरे हैं काल द्रव्य के परमाणु वे भी निरंतर परिणमनशील होने से वे हर एक परिणमनशील वस्तु के निमित्त बनते,
सब मिलकर
सभी सभी एक साथ वे निमित्त कहलाते, निमित्त तो एक साथ असंख्यात हो सकते हैं,
तो कालाणु की फिर ये असंख्यात की कल्पना जो उसको भी अखंड धर्म द्रव्य के समान मान लेते हैं।
इस प्रश्न को और थोड़ा सही रूपांतर दे रहा हूँ, तो हमारी चर्चा में ये बात बहुत आई थी प्रवचन साल में, ये प्रश्न आया था आपके लिए रिजर्व रखा था कि यदि धर्मास्ति अधर्मास्ति की भांति कालाणु काल द्रव्य को भी एक अखंड असंख्यात प्रदेशी माना जाए, असंख्य संख्या नहीं मानी जाए, प्रदेश असंख्य माने जाए और धर्मास्ति की भांति वो एक ही गिनती का रहे, तो प्रणमन व्यवस्था में क्या बाधा आएगी? क्या ऐसा ऐसा क्यों न माने? ऐसा वो एक प्रदेशी क्यों माना जाए? ये चर्चा आई थी इसलिए।
देखो आपका जो प्रश्न उठा है ना वो आपकी कल्पना में उठा है।
हाँ तो कल्पना
है। मैं बता रहा हूँ ना, और कल्पना को छोड़ के वस्तु का जो स्वरूप जिनागम में बताया है वो ही क्यों ना मान लिया जाए? क्या कह रहे?
युक्ति संगत होना चाहिए
ना। नहीं, आगम का कोई भी कथन युक्ति संगत ही होता है।
तो इसमें युक्ति कौन सी
है?
युक्ति ये है कि सर्व कालाणुओं का स्वरूप एक सा है, यानी बटन लखो ही परमठो, यानी वर्तना लक्षण सब परमाणुओं का स्वरूप है। तो वो एक परमाणु कोई ये कैसे डिसाइड करोगे? ये वस्तु के चारों तरफ हजार परमाणु मान लीजिए मौजूद हैं कालाणु, दे कालाणु में कौन सा कालाणु उसके लिए निमित्त बना, बता सकते हो?
जो जहाँ पर वो काम हुआ वहीं के कालाणु निमित्त।
तो वहाँ तो अर्थ ये निकला ना कि एक से ज्यादा कालाणु निमित्त बने, तो एक से ज्यादा में कहाँ तक वाले ग्रहण करोगे ये बता दो।
जहाँ तक हम हैं वहाँ तक।
नहीं 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 नहीं, वो तो सर्व कालाणु परणमनशील हैं और वे परणमन के निमित्त हैं, इसलिए कोई भी द्रव्य के परणमन में सर्व कालाणुओं का निमित्त बना मौजूद है, ऐसा है।
अगले प्रश्न का दूसरा पार्ट भी है जो मैं समझ नहीं सकता आपको, मैं देता हूँ पर्ची, आप कुछ समझ सके तो।
अरे आप अपनी भाषा गुजराती नहीं समझ पाए, देखो जरा क्या लिखा है।
आघाती कर्मों के अभाव में चार गुण प्रकट होते हैं।
हाँ।
तो वहाँ सिद्धालय में ये चार गुण का प्रकटपना क्या दिखता है? सिद्धों में चार गुणों का क्या काम दिखता है? किस रूप में प्रकट होते हैं?
सूक्ष्म
आघाती कर्म के अभाव वाले।
अच्छा, कार्य क्या दिखता है?
हाँ, क्या कार्य?
हाँ ये ठीक है प्रश्न। प्रश्न ये है,
आप समझा दो।
प्रश्न ये है कि आघाती कर्मों के अभाव में चार गुण प्रकट होते हैं, तो वहाँ पर ये चार गुण का प्रकटपना कार्य क्या हो जाता है या क्या क्या हुई क्या दिखता है, ये स्पष्ट करना है। सिद्धों में ये चार गुणों का काम क्या होता है ये देखना है। हाँ, तो जैसे पहला गुण अपन यूं ले लें कि वेदनी कर्म का अभाव हुआ, तो वेदनी के अभाव में अव्यवाधत्व गुण प्रकट हो गया, तो वहाँ केवल इतना कार्य है उसका कि वेदनी कर्म मोह के साथ में मिलकर ये तुम्हारे सुख दुख की सामग्री और सुख दुख का निमित्त बनता था। अब केवली भगवान के तो कोई मोह है नहीं, तो उन्हें तो वो सुख दुख का निमित्त बनने का प्रश्न नहीं, लेकिन ये बदनाम है। किस नाम से बदनाम है? कि ये मोहिनी कर्म के सहयोगी बनकर के सुख दुख का कारण बनता था, तो वो जब तक मौजूद है तब तक वो वास्तव में व्यंजन पर्याय शुद्ध नहीं कहलाती, अथवा प्रदेशत्व गुण की पर्याय शुद्ध नहीं कहलाती। जब अव्यवाधत्व गुण प्रकट हो जाता है तो फिर उसका बाधक कारण जो पूर्व में बनता था उस कारण बने का भी अभाव हो जाने से अब कारण रहा ही नहीं, ये ही दशा है, इसलिए वो स्वभाव अव्यवाधत्व रूप परणमन कहने में आता है। अंतर कुछ नहीं पड़ता, केवली का अनंत सुख और सिद्ध भगवान का अव्यवाधत्व सुख, इसमें कोई अंतर वंतर नहीं है। भाई यही अंतर है कि उनके सुख में अंतर नहीं है। ये जो कर्म का निमित्त है अरहंत के मौजूद होता है, जो पूर्व में सुख दुख का निमित्त बनता था, सिद्धों के वो रहता नहीं है, तो सुख दुख के निमित्त का अभाव होता है, यही वहां कार्य है। इसी तरह से जो चारों का अघातिया कर्म है, वे चारों अघातिया कर्म कोई ना कोई प्रकार से प्रदेशत्व गुण की पर्याय को विपरीत परिणाम में निमित्त बनते थे, विभाव व्यंजन पर्याय में निमित्त बनते थे, उनके क्षय हो जाने पर अब उनकी सब स्वभाव रूप पर्याय परिणाम रही हैं, अब उनमें ये जो विभाव वाली व्यंजन पर्याय होती थी वो नहीं होती, स्वभाव में परिणाम जाती है, तो यही उनका कार्य चलता है, स्वभाव रूप कार्य चलता रहता है, ऐसा है। हाँ देखो, आप योग गुण विद्यमान था ना, वो योग गुण प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, प्रदेशत्व गुण है वो कंपन उसकी पर्याय,
तो उस काल में जब अरहंत अवस्था में थे तब भी कारमाण वर्गणाएं आती थी योग गुण के निमित्त से, योग के परिणमन से कारमाण वर्गणाएं आती थी, लेकिन वे राग ना होने से, मोह ना होने से, वीतराग होने से वे ईरिया पथ आश्रय के रूप में आई और चली जाती थी, रुकती नहीं थी, बंध को प्राप्त नहीं होती थी। किस पर आती क्यों थी? क्यों प्रदेशत गुण का विपरीत परिणमन चल रहा था इसलिए आती थी, और सिद्ध भगवान के वो विपरीत परिणमन मिट गया इसलिए उनके नहीं आती। ये अंतर दिखता है, यही कार्य दिखता उनका अलग अलग।
ये आज का अंतिम सवाल है, प्रश्न है, वो भी प्रतिदूतंत्र है, और ये प्रश्न कांति भाई मोटाने ने जो कल पूछा था उसका फॉलो अप है। कांति भाई ने नहीं पूछा, दूसरे दूसरे किससे पूछा है। कांतिबेन मोटाणी ने जो प्रश्न पूछा इसके बारे में, देव पूजा, गुरु, गुरु भाषा, स्वाध्याय, संयम, तप, ज्ञान का उपदेश पद्मनंदी पंचविशंति और व्रतकांड श्रावकाचार में श्रावक के लिए अत्यंत आवश्यक
आवश्यक
कहा गया है, उसका स्पष्टीकरण कीजिए।
देखिए ये बता दूं आपको, बहुत बढ़िया, जीव जितने भी मोक्ष के साधक हैं वे सदा काल निर्विकल्प नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते, ये हम बता रहे हैं। में रहते हैं का तो प्रश्न ही नहीं, पर सदा काल नहीं रह सकते। अरे अंतर्मूर्त भी रहें तो केवल ज्ञानी हो जाते हैं, इसलिए उनका अधिकांश काल सविकल्प दशा में बीतता है। यूं कहिए कि आदिनाथ भगवान थे ना, उन्होंने 1000 वर्ष तक तपश्चर्या की, उस काल में उनके सविकल्प प्रशस्त दशा चल रही थी, स्वभाव चलता था, लेकिन अंतर मुहूर्त तक स्वभाव में टिकने वाला अखंड मान कहना चाहिए अनुभूति नहीं बढ़ पाती थी, तो उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई, और 1000 वर्ष लग गया। बाहुबली को वही कार्य करने में 1 वर्ष लगा, भरत चक्रवर्ती को वही कार्य करने में अंतर मुहूर्त लगा। तो आप ये बताओ, आपको बड़े तपस्वी कौन नजर आ रहे, भाई 1000 वर्ष वाले कि अंतर मुहूर्त वाले? अंतर्दृष्टि वालों को तो ये कहलाएंगे आनर्स, समझ में आया कि नहीं? आनर्स समझते हैं जो नहीं, जो अपनी पढ़ाई को, अपने कार्य को शीघ्र कर ले, वो आनर्स कहलाते हैं। हाँ, अपना कार्य शीघ्र कर ले, जैसे किसी को 1 क्लास पास होने में 2 साल लगे और एक व्यक्ति 1 साल में 2 क्लास में पास कर जाए, वो आनर्स है उसका। आई समझ में ना? तो भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में जो मर्यादा थी अधिकतम, उतने में वो कार्य कर लिया है। तो पुरुषार्थ की दृष्टि से देखो तो हीन अधिक किसी का पुरुषार्थ नहीं, केवल तुमने बाहर की दृष्टि में देखा है तो उनकी जो बाहर की परिणति चलती रही है वो तो भिखारी परिणति में 1000 वर्ष लगे, वो कोई शुद्ध परिणति तो सबकी एक सी है ना, केवल ज्ञान प्राप्त करने में, इसलिए कोई उस परिणति में अंतर नहीं है, वो परिणति बिल्कुल एक सी।
फायदे में कौन रहे पंडित जी?
हैं,
ये 3 के उदाहरण
विषय मतलब
फायदे में
आवश्यक की बात चल रही
है। अब 6 आवश्यक में बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए जब सविकल्प दशा ज्ञानियों की भी चलती है, अनुभूति भी हो जाए, तो 4थे गुण स्थान में बिजली की टिमकार की भांति अनुभूति होती है। क्या कहा? बिजली की टिमकार, जैसे तुम्हारे कोई तुम्हारे कैमरे का बटन दबाए ना और फोटो खिंच गई, समझ में, और वो तुरंत बटन बाप वो दरवाजा बंद हो गया। ऐसे आत्मा की अनुभूति में भी 4थे गुण स्थान में वो ऐसे ही दर्शन होते हैं, और उतने में पूरे दर्शन हो जाते हैं, और उसमें बिल्कुल हमेशा के लिए स्मरण ज्ञान में फोटो खिंच जाती है, तो उसको भूलते नहीं है कभी, वो लब्धि रूप कहलाती है, समझ में। पर अनुभूति तो बहुत कम काल की होती, मुनि राजों को बहुत शीघ्र शीघ्र होती है, पंचम गुण स्थान व्यक्ति को 4थे वाले से थोड़ा शीघ्र होती है, लेकिन उसका अधिकांश समय स्वभाव में जाता है। तो वो देखिए, उसमें नियम ये है कि ऊपर के गुण स्थान में सम्यक दृष्टि के बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है और घटता हुआ अशुभोपयोग होता है। क्या कहा? बढ़ता हुआ शुभोपयोग, घटता हुआ अशुभोपयोग होता है। इसलिए इन सब विधानों को कहा कि जब शुभ परिणति हो तो तुम्हारे लिए क्या करने योग्य है? हैं? तो कहते अशुभ से बचने के लिए ये जैन ये क्रियाएं करना इन क्रियाओं के काल में कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखना, निर्मल स्वभाव की अनुभूति का ही अंतर में रुचि रखना, तो ये सारी क्रियाएं सार्थक होंगी और तुमको दुर्गति ले जाने से बचाएंगी।
इसलिए आवश्यक क्या है?
इसलिए आवश्यक है विकल्प दशा में अशुभ को छोड़कर शुभ क्रियाओं में लगना चाहिए, लेकिन उनमें धर्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए।
बस इतनी चीज बात है।
जिनवाणी स्तुति जावाणी।